वहीं देव की निगाह भी आस्था पर गई। आस्था से जब वो पहली बार मिला था, उसका पहली नज़र में उसे काफ़ी अच्छी लगी और उसे आस्था के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आस्था की जिंदगी में अरमान सिंघानिया जैसा हार्टलेस इंसान आया था। देव अरमान को काफ़ी सालों से अच्छी तरह से जानता था। देव 15 साल का था तब से वो अरमान के साथ था, इसीलिए अरमान उसे भाई के जैसा ही ट्रीट किया करता था। वेल, जब अरमान ने देखा कि देव बाकी सब में इन्वॉल्व हो गया है तो उसका गुस्सा बढ़ गया। अगर तुम सबकी फालतू बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर लें? अब जैसे ही अरमान ने थोड़ा सा सख्त लहजे में ये कहा, सबके सब शांत हो गए थे, मानो उन सबको सांप सा सूंघ गया हो। वहीं ध्रुव और आहन दोनों आंखों ही आंखों में शरारत करने के मूड में थे, क्योंकि उन्हें दादाजी की कही हुई बातें याद थीं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आस्था और अरमान एक हो सकें, तो इसीलिए वे अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। हालांकि सुमित और आकाश का दिमाग इन सब कामों में नहीं चलने वाला था, लेकिन ध्रुव और आहन जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। तभी अचानक ध्रुव की नज़र भी आस्था के कपड़ों पर गई। अरे भाभी, आपके कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, क्या आपको मंदिर में कुछ परेशानी हुई थी? क्योंकि आपके कपड़ों पर ये धब्बे कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आस्था का घुटना छिल गया था, उसका खून वहां लगा हुआ सूख चुका था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर धब्बे दिखाई दे रहे थे। आस्था को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील हो रहा था, वो सोच रही थी कि कहीं धब्बों का मतलब कोई कुछ और ना समझ ले। हालांकि आस्था ने अनारकली सूट पहन रखा हुआ था, लेकिन घुटनों पर लगे हुए खून के धब्बे उसके सूट में से भी दिखाई दे रहे थे। वेल, आस्था को इतना एम्बेरस्ड होते हुए देखकर ध्रुव को भी अपनी कही हुई बात पर अजीब सा लगने लगा था। और वहीं अरमान तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर, तो वो आज तक मॉल आया ही नहीं था, लेकिन आज उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था और ऊपर से उसके चारों दोस्त उसके साथ मौजूद थे। और मन ही मन में वो सोच रहा था, जाने आज मैं किसकी शक्ल देखकर उठा था, आज कितना बेकार दिन गुजर रहा है, इन लोगों ने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है, सारा काम अब रात भर करना होगा, ऊपर से ये लड़की कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, ये लोग इस लड़की से इतने प्यार से कैसे बात कर सकते हैं, हाउ डिड दे डू दैट? मुझे लगता है कि ज़रूर ये लड़की कुछ ना कुछ प्लान के तहत यहाँ आई है, वरना जिससे उसकी शादी तय हुई थी उसी लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर जाना, ये बात अरमान को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। इसीलिए उसने बहुत पहले ही आस्था की डिटेल निकलवाने के लिए देव को लगा रखा था, और देव ने साथ ही प्रियंका घर से क्यों गई थी और किसके साथ गई थी उनकी पूरी डिटेल पता लगवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों के द्वारा किडनैप करवा लिया था और इस वक्त वो दोनों उसकी गिरफ्त में थे। इसीलिए जल्द से जल्द अरमान शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था। कहीं ना कहीं वो दोनों से मिलकर इस बात का पता लगाना चाहता था कि आस्था का इस केस में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरमान सिंघानिया को शादी से मना किया और शादी के मंडप से कैसे भाग गई। तो कहीं ना कहीं अरमान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो जल्द ही सारी बातें उससे पता करना चाहता था। वेल, धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था, तब अरमान के लिए एक मिनट गुजरी हुई भी एक एक घंटे के बराबर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त वहां पर उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो इसीलिए अरमान उन चारों को देखता हुआ कहने लगा, अगर तुम चारों को यहीं इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो, तुम सब मॉल देख चुके हो, तो हम यहां से वापस भी चल सकते हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, वे चारों एक साथ बोले, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं, वहां ऊपर सेकंड फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलिए वहीं पर चलते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वे सब एस्केलेटर के पास आ गए थे। और एक पल को आस्था एस्केलेटर को देखकर चौंक गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एस्केलेटर पर गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा था, लेकिन अब इस बार फिर एस्केलेटर को देखकर उसके गले सूखने लगा। वो सोचने लगी, वो इन लोगों को कैसे बताए कि उसे इस पर नहीं चढ़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार तो उसकी मामी ने जैसे तैसे उसका हाथ थामकर उसे एस्केलेटर से ले गई थी, लेकिन अब वो एस्केलेटर कैसे चढ़ेगी, वो इन लोगों को कैसे बताएगी? एक एक करके सबसे पहले अरमान, फिर बाकी चारों एस्केलेटर पर खड़े हो गए थे और आस्था उन सबके पीछे रह गई थी। और जल्दी ही वे एस्केलेटर से, यानी चलने वाली सीढ़ियों से सीधा ऊपर पहुंच चुके थे। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि वे चारों देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। और अरमान सबसे आगे जा रहा था, उसका ध्यान अपने हाथ में पड़े हुए आईपैड पर था, क्योंकि वो अपने मीटिंग्स की डिटेल्स चेक कर रहा था, क्योंकि आज अरमान की पेरिस में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी, तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स चेक कर रहा था। जल्दी ही वे सभी आगे निकल गए और तब अरमान कहने लगा, वो सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। तब ध्रुव नासमझी में कहने लगा, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लेंगे? ऐसा कहकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था तो वहां थे ही नहीं। तब ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर कहने लगा, भाई भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अब ध्रुव ने जैसे ही ये कहा, बाकी सब भी उसके साथ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें आस्था कहीं भी नहीं दिखाई नहीं दी। तभी अरमान की नजर एस्केलेटर के नीचे खड़ी हुई आस्था पर पड़ी, जो कि हिचकिचाते हुए एस्केलेटर पर अपने पैर रखने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन डर के मारे वो बार बार फिर अपने कदम पीछे ले ले रही थी। अब अरमान ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वो सोचने लगा कि आखिरकार कोई लड़की इतनी ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है, ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि अरमान उस वक्त अपने सर पर टेप कर रहा था और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एक पल को अरमान को इस तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ देखकर उन पांचों के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अरमान की नजरों का पीछा किया और जैसे ही उनकी नजर आस्था पर पड़ी, जो कि उस वक्त एस्केलेटर से ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वे पांचों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और साथ ही उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अब क्या किया होगा। तभी ध्रुव कहने लगा, भाभी तो नीचे रह गई और हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी के लिए ये शहर नया है, हम इस तरह से भाभी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर ध्रुव कहने लगा, मैं जाता हूँ, मैं भाभी को यहाँ लेकर आता हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र अरमान पर पड़ी। तब उसने अरमान से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपको जाकर भाभी की मदद करनी चाहिए, और अगर आप इस तरह से भाभी की मदद करेंगे तो हो सकता है कि दादाजी आपसे खुश हो जाएं। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और आहान से कहने लगा, तुम जाओ, जाकर उस लड़की को ऊपर लेकर आओ। सिली गर्ल, इसे एस्केलेटर पर कैसे चढ़ते हैं ये भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने आहान को उसे लेकर आने के लिए कह दिया था।
लेकिन ध्रुव ने आहान को मना कर दिया था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि अरमान ही उसे लेने के लिए जाए। आहान ने अरमान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया और कहने लगा, भाई मेरा तो पेट बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है, सॉरी भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहकर आहान बिना अरमान की ओर देखे और उसकी कोई और आगे की बात सुने वहां से खिसक लिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी अरमान की ओर नहीं देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से अरमान को देख लेगा तो अरमान तो पक्का उसे गुस्से से ही घूर रहा होगा। अगर आहान ने एक बार अरमान की गुस्से वाली आंखों में देख लिया तो फिर वो वहां से वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो सीधा बाथरूम में घुस चुका था। अब अरमान आकाश और सुमित से तो कह नहीं सकता था और देव भी तुरंत मॉल के दूसरे हिस्सों को देखने लगा, तो अरमान समझ चुका था कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। अरमान को रह रहकर उन सब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी ज्यादा लेट लग रहा था, तो इसीलिए वो और देरी नहीं करना चाहता था। बिना किसी देरी के आस्था के पास वापस से अरमान नीचे पहुंच चुका था और आस्था ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी ठीक पीछे अरमान सिंघानिया आकर खड़ा हो गया है। तभी अरमान ने तुरंत उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, क्या तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो सकता है? क्या तुम खुद से चढ़कर ऊपर भी नहीं आ सकती हो? कौन से दुनिया से आई हो तुम? ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आस्था को घूरने लगा। आहान जो कि बाथरूम में गया था, अरमान के नीचे जाते ही वो भी तुरंत आकर वहां खड़ा हो गया था, क्योंकि वो ये सीन मिस नहीं करना चाहता था, और ध्रुव और आहान दोनों ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था ताकि वे दादाजी को दिखा सके और दादाजी के गुड बुक में अपने नंबर बढ़ावा सके। दूसरी ओर अब इस तरह से अरमान को बोलते हुए देखकर आस्था ने अपनी नजरें नीचे झुका लिए थे। कुछ आंसू उसके गालों पर भी आ गए थे, क्योंकि वाकई वो अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। लेकिन उसमें उसकी भी क्या गलती थी, शुरू से बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ और सिर्फ गांव में ही पली बढ़ी थी, इस तरह से कभी भी शहर में नहीं आई थी। पिछली बार भी जब वो प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गई थी, वहां पर भी छोटे से स्टेयर्स थे जो कि थोड़े से आगे तक ही जाते थे। आस्था तो उनसे चढ़ने में भी डर गई थी, लेकिन यहाँ तो काफी बड़ा मॉल था और काफी ऊंचाई तक स्टेयर्स जाने के लिए थे, तो इसीलिए उसे काफी डर लग रहा था। अब अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखकर इरिटेट होते हुए कहा, अभी बेवकूफों की तरह यहाँ पर रोना बंद करो, समझी तुम? ऐसा कहकर जल्दी ही उसने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और उसने जल्दी से अरमान को पकड़ लिया और अपने दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था। एक पल को आस्था को ऐसा करते हुए देखकर अरमान उसमें खोसा गया था, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का विदाउट मेकअप, एकदम गोरा रंग और बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था।